ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की पंजीकरण में नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली शिकायतों पर जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज में भारी कटौती की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की और दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नववर्ष के कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया। इसके बाद दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को तोपों की सलामी दी गई। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। इससे पहले आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को उनके घर से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। इसके बाद वहां से फूलों से सजे वाहन में अंत्येष्टि स्थल ले जाया गया। देश में 1 जनवरी तक 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन सार्वजनिक सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। डॉक्टर सिंह को भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। रईसुद्दीन रेहान के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे 92 वर्ष के थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य में हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। भारतीय जनता पार्टी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा और एनडीए सरकार देश के आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। पंजाब में हिंदू कॉलेज ने अपने प्रतिभाशाली पूर्व छात्र डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमृतसर में श्रद्धांजलि दी। शिक्षकों, छात्रों तथा पूर्व छात्रों और राजनीतिक नेताओं ने दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। हिंदू कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय खन्ना ने कॉलेज परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की घोषणा की है। मनमोहन सिंह हिंदू कॉलेज में 1951 से 1953 की बैच के विद्यार्थी थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण में नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली शिकायतों के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। मामले में उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कार्यालय ने लाभ देने की आड़ में दिल्ली के नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने इस संबंध में उपराज्यपाल कार्यालय में शिकायत की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस जांच को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। श्री केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला सम्मान योजना का रोकने का प्रयास कर रही है।
जिन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी, किस चीज की जांच होगी, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है, ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक एक भी महिला को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। श्री सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी घोषणाएं सिर्फ महिलाओं का वोट लेने के लिए करती है।
पंजाब में सरकार बनाने से पहले तुमने 1,000 महिला सम्मान की घोषणा की थी, क्या हुआ? एक भी माता बहन को 1 रुपया नहीं दिया गया। सिर्फ वोट लेने का हथकंडा है तुम्हारा। तुम लोग महिलाओं का सम्मान नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो, धोखा देते हो, चोरी करते हो। अरे महिला सम्मान सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों से सीखो।
इस बीच कांग्रेस के नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि कोई भी योजना जिसमें पैसे बांटे जाएं वो चर्चित हो जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने पर 2100 रुपए देने की बात कही थी। बाद में एक विज्ञापन में दिल्ली सरकार ने इस तरह की किसी योजना की जानकारी नहीं होने की पुष्टि की।
इन्होंने अनाउंस किया कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए महीना ये सरकार देगी जब चुनाव जीत कराएंगे। वायदा करना हर पार्टी का अधिकार है, आप वायदा करिए, वायदा पूरा होगा नहीं होगा आप और जनता के बीच में है। हम लोगों ने लेकिन ये सवाल उठाया कि इसी तरीके की स्कीम आपने पंजाब में जब चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के समय आपने कहा था कि हम पंजाब की हर महिला को शायद 1500 रुपए था, मुझे ठीक से अमाउंट नहीं मालूम है, ऐसा कुछ था, हर महीने उनकी जेब में हम देंगे, वहां तो दी नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो वाजिब सवाल था कि साहब इसका मतलब पंजाब में जब आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं दिल्ली में क्यों नहीं।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज अरविंद केजरीवाल पर फर्जी वोटर कार्ड बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए दिल्ली सरकार फर्जी लोगों के फर्जी आधार कार्ड से वोट बनवा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं वे 18 वर्ष के नहीं बल्कि उनकी उम्र 55 वर्ष 48 साल से लेकर 80 साल तक की हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली भाजपा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार बुराड़ी विधानसभा से रतन त्यागी चुनाव लड़ेंगे, जबकि चांदनी चौक से एनसीपी ने खालिद उमर रहमान को मैदान में उतारा है। वहीं छतरपुर से नरेंद्र तंवर और ओखला से इमरान सैफी को टिकट दिया गया है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि एनसीपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी। उन्होंने बताया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के सबसे सक्रिय राजनीतिक दलों में से एक है। महाराष्ट्र में हम लोगों का समझौता है और लोकसभा में भी हम लोगों ने महाराष्ट्र लक्षद्वीप में एक साथ चुनाव लड़ा। दिल्ली में भी हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर हम लोग एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़े। बातचीत भी की लेकिन उसका कोई सकारात्मक जवाब हम लोगों को नहीं मिला। तो वहाँ जो हमारी प्रदेश की कमेटी है फिर उसने फैसला ये किया कि हम अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे।
मुख्यमंत्री आतिशी ने आज पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज पीपीएसी में भारी कटौती की घोषणा की है। सुश्री आतिशी ने कहा कि इस घोषणा के बाद सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस कदम को दिल्ली सरकार की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का परिणाम बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को प्राथमिकता दी। इस घोषणा के बाद बीआरपीएल के लिए पीपीएसी 35.83% से घटकर 18.19%, BYPL के लिए 38.12% से घटकर 13.63% और TPDDL के लिए 36.33% से घटकर 20.52% हो गई है। दिल्ली सरकार के सभी स्कूल में आज अभिभावक शिक्षक बैठक PTM का आयोजन किया गया। बारिश के बावजूद इसमें अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने कालका जी के सर्वोदय विद्यालय में PTM में भाग लिया और अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई और प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में बड़े प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जा रही है।
मेगा पीटीएम एक ऐसी शुरुआत है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करी है। पहले मेगा पीटीएम से बड़े प्राइवेट स्कूलों में होती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मौका नहीं मिलता था कि उनके माता पिता स्कूल आएं, टीचर से बात करें, तो पेरेंट्स को भी इस बात की खुशी है कि जो शिक्षा पहले बड़े प्राइवेट स्कूल में मिलती थी आज वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी समाचार के तुरंत बाद आकाशवाणी के प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ रूपये मूल्य की 3.5 किलो चरस बरामद की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज 45,000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली के मदर डेयरी के क्षेत्रीय प्रभारी को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने बताया कि आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मामले की जांच जारी है। सीबीआई ने यह भी बताया कि क्षेत्रीय प्रभारी ने वितरण अधिकार रद्द न करने के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से बातचीत के बाद रिश्वत की राशि को 60,000 रुपए से घटाकर 45,000 रुपए कर दिया था। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए दिल्ली पुलिस यातायात पुलिस ने विशेष प्रबंध किए हैं। यातायात पुलिस ने बताया कि 31 दिसंबर की रात 8 बजे से नव वर्ष के जश्न के मद्देनजर मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह मार्ग, मिंटो रोड, चैम्सफोर्ड रोड, आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त रोड, फिरोज शाह रोड, गोल मार्केट, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जयसिंह रोड, बांग्ला साहेब लेन और विंडसर प्लेस से आगे कनाट प्लेस की ओर वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि कनाट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्किल में वैध पास वाले वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। राज्य सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने को भी मंजूरी दी। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं को भी मंजूरी दी गई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्षा से वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की सख्तियां अब भी लागू हैं।
ग्रैप 3 के तीसरे चरण के हटने से अब राजधानी में सभी तरह के ट्रकों को प्रवेश दिया जा रहा है। तीसरे चरण की पाबंदियों के हटने के बाद दिल्ली NCR में सभी स्कूल खोले जा सकेंगे। BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल के वाहनों से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। वहीं आयोग ने दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक भी हटा ली है। हालांकि आयोग ने बताया कि शहर में ग्रैप के तहत दूसरे चरण की पाबंदियां अभी जारी रहेंगी, जिनमें आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक, पार्किंग शुल्क में वृद्धि और CNG तथा इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाना शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के पंजीकरण में नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली शिकायतों पर जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।